ऊर्ध्वमूलो अवाक्षाख एषो अश्वत्थ सनातनः तदैव शुक्रम् तत्ब्रह्म तदेवामृत उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन। संसार के संदर्भ में हमारे शास्त्र ने दुखालयम शाश्वतम इस उक्ति के द्वारा संसार की नश्वरता का प्रतिपादन किया है और यहां पर अश्वत्थ शब्द के द्वारा संसार के स्वभाव के संदर्भ में कहा कि संसार का अस्तित्व बहुत क्षणिक है। ये संसार क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है, इसका अस्तित्व कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद भी हमें यह सनातन मालूम पड़ता है। संसार है परिवर्तनशील, लेकिन हमें परिवर्तनशील मालूम नहीं पड़ता है। हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम बहुत लंबे समय तक जिएंगे। हम संसार के पदार्थों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ये सत्य है परिवर्तनशील, लेकिन हमारा आचरण हमारा व्यवहार ऐसा है ये अपरिवर्तनशील। ये सारी चीजें छूटने वाली हैं, लेकिन हम व्यवहार ऐसा करते हैं कि ये चीजें कभी छूटने वाली नहीं। ये बड़ी सारगर्भित बात बोली, अश्वत्थ सनातन। एक तो परिवर्तनशील है जिसका कल तक होने का भरोसा नहीं है, और उसके बाद भी कहते सनातन, वो बहुत सनातन बहुत पुराना है, वो अनादि अनंत। ये बहुत रहस्य की बात बोली। संसार सनातन भी है और संसार नश्वर भी है। संसार अनादि भी है और संसार सादि भी है। आप तत्व दृष्टि से देखेंगे, ब्रह्म दृष्टि से देखेंगे तो ये संसार सनातन है। एक वेदांत का सूत्र है, यत अध्यस्तम भवति तत् अधिष्ठानात् किंचिदपि अतिरिक्तम न भवति। जो अध्यस्त होता है वो अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता है। केवल अतिरिक्त मालूम पड़ता है, लेकिन वो अतिरिक्त नहीं होता है। अध्यस्त वस्तु की सत्ता अधिष्ठान रूप होती है। इसको समझने के लिए दृष्टांत आपके लिए यही रज्जू सर्प का बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने रज्जू में सर्प समझा, वो सर्प रज्जू से अलग नहीं है, रज्जु रूप है। वो रज्जु ही है, लेकिन वो सर्प मालूम पड़ रही है। जैसे अलंकार आपको मालूम पड़ रहे हैं ये अलग है, लेकिन वो केवल अलंकार नहीं है, उसके अंदर स्वर्ण है। आप सोने की दृष्टि से देखेंगे तो अलंकार भी सत्य है। आप सोने की दृष्टि से देखेंगे तो अलंकार भी सत्य है। आप सोने की दृष्टि से देखेंगे तो अलंकार भी उतने ही सत्य हैं जितना सोना सत्य है। लेकिन आप अलंकार की दृष्टि से देखेंगे तो अलंकार सत्य नहीं है। यहां पर यही कहना चाहते हैं कि आप अलंकार के दृष्टि से देखेंगे तो ये अलंकार न अनादि है और न अनंत है। आप अलंकारों को देखेंगे तो वो पैदा हुए होंगे, अलंकारों की अपेक्षा सोने का होना ज्यादा है, सोने का होना ज्यादा लंबा है, सोना भी पैदा हुआ है, दृष्टांत है, सोना भी नष्ट किया जा सकता है। आप सोने को नष्ट करके उसका भस्म बनाते हैं, स्वर्ण भस्म खाते हैं, उसको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आप दृष्टांत के संदर्भ में आप सोचते हैं तो अलंकारों की अपेक्षा सोने का अस्तित्व ज्यादा है, लंबा है, ज्यादा सत्य है। सोने में अलंकार कल्पित है, आप सोने की दृष्टि से देखेंगे तो अलंकार भी सोना है और उसका अस्तित्व भी लंबा है, वो स्थायी है, वो अनादि है, वो अनंत है। आप सोने की दृष्टि से देखेंगे और अलंकार के दृष्टि से देखेंगे तो अलंकार तो पैदा हुआ है, उसको आपने बनाया है, सोने को गर्म किया, पिघलाया, ठोका, पीटा और उसके अलंकार बनाए हैं और उन अलंकारों को मिटा भी सकते हैं। इसलिए श्रुति कहती है कि आप सोने की दृष्टि से देखेंगे तो अलंकार भी सनातन है, अलंकार भी अनादि है, अलंकार भी अनंत है सोने की दृष्टि से। लेकिन अलंकार के दृष्टि से अलंकार अनादि नहीं है, न अनंत है। ऐसे अश्वत्थ एष सनातन, आप संसार के दृष्टि से संसार को देखेंगे तो ये कभी अनादि नहीं है, न सनातन है। लेकिन तत्व दृष्टि से देखेंगे तो यह सनातन है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप ये हमेशा मंत्र बोलते हैं और अक्सर ये मंत्र तब बोलते हैं जब हम लोग प्रवचन पूरा करने लगते हैं और इसमें पूर्ण शब्द है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये प्रवचन पूरा करने का मंत्र है। ये मंत्र प्रवचन पूरा करने का मंत्र है, इसलिए हम बोल दे ओम पूर्णमदः, जैसे बोलना शुरू कर सब समझ जाओ अब ये प्रवचन पूरा हो गया। हाँ, तो आदमी ऐसे सोचता है कि ये मंत्र तो प्रवचन पूरा करने के लिए है और अक्सर इसका प्रयोग इसी में किया जाता है, ओम पूर्णमदः हो गया भैया चलो। लेकिन ये मंत्र बहुत उच्चतम है, ये केवल प्रवचन पूरा करने का मंत्र नहीं है, इसमें पूर्ण शब्द सुनकर हमें ऐसा लगता है कि ये मंत्र इसी के विनियोग में होगा। ओम पूर्णमदः और ओम सहनावतु बोलते आदमी को लगता है कि शुरू करने वाला मंत्र है। जैसे आप ओम सहना भवतु बोलो प्रवचन शुरू हो गया चलो, ये मंत्र जो है ये प्रवचन शुरू करने का मंत्र है, नहीं, ये बहुत उच्चतम प्रार्थना है। ये केवल प्रवचन के आरंभ का मंत्र नहीं है, ऐसी कोई विधि नहीं है कि प्रवचन के आरंभ में ये मंत्र बोलना चाहिए। ओम सहना भवतु सह नौ 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 बने हम सात, जो वक्ता और श्रोता है, गुरु और शिष्य हैं, ये सारी जो दुनिया है ये सबकी रक्षा हो साथ साथ, ये परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही इस मंत्र में, हम सबकी साथ साथ रक्षा हो, हम साथ साथ भोजन करें, हम साथ साथ शक्तिमान बने, सह वीर्यं करवा वहे और हम सब साथ साथ तेजस्वी बने रहे। मां विद्विषा वहे, आपस में हम किसी से राग द्वेष न करें। ये बहुत उच्चतम प्रार्थना है। गुरु शिष्य श्रोता वक्ता ये सारी जो दुनिया के लोग हैं, हम किसी से आपस में राग द्वेष न करें, सह अस्तित्व की प्रार्थना है। और उसके बाद आप अंत में प्रार्थना करते हो, ओम पूर्णमद सुन पूर्ण। अभी पूर्णमदम ये मंत्र भी बड़ा सुंदर है, वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। अपूर्णता का मध्य में भ्रम है, वो पूर्ण है, वो परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदम, वो भी पूर्ण है, वो माने परमात्मा जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ, वो पूर्ण है। और ये इदम इदम माने पूर्व दृश्यमानम जगत, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है जगत, कहां है वो? जो आप बोलते इदम इदम बोलते, तो इदम शब्द का वाच्य क्या है? हम तो बोल तो देते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् इदम् 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 माने कौन कौन, इदम माने कौन, इदम माने आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको जो सुनाई दे रहा है, आपको जो सूंघने में आ रहा है, आपको जो चखने में आ रहा है, आपको जो छूने में, आपके दृष्टि का विषय, आपके इंद्रियों का जो विषय है, जो इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय, ये पूर्व दृश्यमान जो जगत है, आपके अनुभूति का विषय, ये इदम शब्दवाच्य, ये जो आपके व्यवहार का विषय है, वो कहां है? वो यही आपके पास है, आपके ऑफिस में, आपके टेबल पर, आपके घर में, आपके अगल बगल में, मित्रों के रूप में, परिवार के रूप में, रिश्तों के रूप में, ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही वो इदम है। श्रुति गति ये सब कुछ पूर्ण है, जैसे वो पूर्ण है वैसे ये भी पूर्ण है। लेकिन आपको पूर्ण मालूम पड़ता है कि नहीं? वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, बात तो सत्य है, बीज भी पूर्ण है और वृक्ष भी पूर्ण है। ये जो पूर्णता है ना, अपने आप में है, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ती, उसका कारण है। हम किसी भी वस्तु की तुलना जब करते हैं तो वो वस्तु या तो अधूरी मालूम पड़ती है या तो पूरी मालूम पड़ती है। आप केवल वस्तु को देखिए, आपका जो होना है वो पूरा का पूरा होना है। किसी भी वस्तु का जो होना है ना, वो पूरा का पूरा है, उसमें किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं है। एक फूल आप ले लीजिए और आप फूल को देखिए, वो फूल पूरा है क्या अधूरा है? पूरा है। लेकिन आप दूसरे की दृष्टि से देखेंगे, आप उसकी तुलना करेंगे, आप उसको विचार करेंगे, आप दो चीजें सामने रखेंगे, तो आपको अधूरी मालूम पड़ेगी। ये अधूरापन द्वैत जन्य है, ये अधूरापन सापेक्ष है। हमारे दृष्टि का विषय जब द्वैत होता है तो वहां सापेक्षता आ जाती, इसकी अपेक्षा। एक बहुत सुंदर बात, आपके सामने सभी लोग गोरे ही गोरे होना तो आपको कोई गोरा मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन उन गोरों के बीच में एक काला आ जाए तो आपको गोरे ज्यादा गोरे मालूम पड़ने लगते हैं, और कालों के बीच में एक गोरा आ जाए तो आपको काला ज्यादा काला मालूम पड़ने लगता है। मेरे को लगता है कि जिस प्रदेश में, जिस देश में गोरा आदमी ही ना हो, वहां काले ही काले हो, तो उसको काला कहना भी बहुत मुश्किल है। आप उसको काला बोलोगे तो वो बोलेगा काला क्या होता है, काला क्या होता है। ये सापेक्ष, ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने ये सापेक्ष हैं, ये द्वैत सापेक्ष हैं। इसकी अपेक्षा ये, इसकी अपेक्षा ये, आप एक पक्षी को ले लीजिए, वो पक्षी पूरा है कि अधूरा है, एक मनुष्य को ले लीजिए, पूरा है कि अधूरा है। लेकिन हम उसकी तुलना करते हैं, ये तुलना द्वैतमूलक है, ये अज्ञान जन्य है। आप किसी भी वस्तु को आप देख ले, केवल देख ले, वो पूरी की पूरी है, लेकिन दूसरे की अपेक्षा नहीं करना है, दूसरे की तुलना नहीं करना है। जब हम देखते हैं अपने घर के आदमी को, तो आप तुलना करके देखते हैं कि बिना तुलना करके देखते हैं? आप तुलना करके देख ले, ओहो उसकी अपेक्षा, तो आपको अधूरी मालूम पड़ेगी। और जो कारण तत्व हैं वही कार्य तत्व हैं। परमात्मा से बना ये संसार, यदि परमात्मा पूरा है तो ये संसार भी पूरा होना चाहिए। परमात्मा की कृति और अधूरी, ये अधूरापन अज्ञान जन्य है। यदि भगवान ने बनाया तो पूरा होगा कि अधूरा होगा? वो भाई भगवान ने बनाया, और आप ये कैसे कह सकते अरे ये तो अधूरा है? अधूरापन मानी कमी हो गई ना, और ये कमी जो अज्ञानजन्य होगी। इसलिए ईश्वर ने बनाया सृष्टि, सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ वो अधूरा नहीं है, वो पूरा ही है, क्योंकि जैसा परमात्मा वैसा ही है, वो जैसा कारण में वैसे कार्य में, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदम् ये भी पूरा है। इसलिए हम ले इसको टोटल में, आप किसी भी चीज को ले अधूरेपन से न ले। आप जहां भी हैं पूरे मन से जिए, जहां भी हैं आपको पूरे मन से जीना चाहिए। आपको जहां जीना है वहां इस अर्थ में नहीं जीना चाहिए, ओहो असंपन्न वा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्यम। महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी ने बहुत कुछ शास्त्रों का निर्माण किया, 18 पुराणों की रचना कर दी, वेदों के 4 विभाजन कर दिए, महाभारत की रचना के 1,00,000 मंत्रों वाले, और उसके बाद भी तथापि बत मे देह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभू असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्यम्। उसके बाद भी महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी को पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा था, असंपन्न। इसलिए आदमी के जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है। हम बहुत कुछ जीवन में करते हैं, बहुत कुछ, और उसके बाद भी आदमी को लगता है कि कुछ भी नहीं किया। आदमी कितना भी बड़ा हो जाता है तो भी उसको ऐसा लगता है कि खाली है, कुछ भी नहीं हुआ, असंपन्न अपूर्णता का अनुभव आदमी को पीड़ा में ले जाता है, वेदना में ले जाता है, शोक में ले जाता है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, क्या है। और यही बात व्यास जी महाराज जी के जीवन में थी। व्यास जी महाराज जी भी सोच रहे थे, खालीपन का अनुभव कर रहे थे, और उस समय नारद जी महाराज जी गए वहां। नारद जी महाराज जी ने पूछा, पाराशर्य महाभाग भवता कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव। चेहरा देख करके नारद जी महाराज ने जान लिया था, और उसके बाद पूछा कि आप संतुष्ट तो है शरीर से, मन से, आत्मा से, आप से संतुष्ट हैं? व्यास जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा, अस्त्वैव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्मभूतम्। बोले सब कुछ ठीक है, शरीर ठीक है, स्वस्थ है, कोई रोगादि विकार नहीं है, मन भी ठीक है, कोई रागादि विकार नहीं है, तथापि नात्मा परितुष्यते में, लेकिन मेरी आत्मा ठीक नहीं। अभी आप लोग वेदांती हैं, आप बोलेंगे आत्मा तो कभी बेठीक होती ही नहीं है, आप वेदांति तो चट से बोलेंगे महाराज आत्मा तो कभी ठीक नहीं होती, और व्यास जी महाराज जी कहते तथापि नात्मा परितुष्टते, मेरी आत्मा ठीक नहीं है। ये अधूरापन है, ये खालीपन है, और ये खालीपन कब भरेगा? संसार के दृष्टि से नहीं भरेगा। यदि संसार में पूर्णता का बोध हो, आत्म तत्व का बोध हो, आपको मालूम पड़े वो भी और ये भी एक तत्व है, ये बना परमात्मा से पूरा का पूरा है, जब आपको बोध होगा तो आपके मन में पूर्णता आएगी, समझ में पूर्णता आएगी, और उसके बाद मन के सारे खालीपन पूरे होंगे। आपको समझना होगा दुनिया की कोई भी चीज आप प्राप्त कर ले तो वो दुनिया की चीज कभी पूरी नहीं होती है। अच्छा, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सबके आगे ही रहूं, सबके आगे, तो ये क्या संभव है क्या सबसे आगे आपका होना? आप गाड़ी चला रहे हैं, पूना जा रहे हैं, हाईवे पर हैं, हजारों गाड़ियां जा रही हैं, और आप सोचते हैं कि मैं सभी गाड़ियों को ओवरटेक करूं, ये क्या संभव है? अरे आप एक को करेंगे तो दूसरी आएगी, दूसरी ने तीसरी, आप कितना करोगे? आप संसार के किसी भी कोण पर खड़े होके देखना, आपको आपके आगे कोई चीज मालूम पड़ेगी, और जब आगे मालूम पड़ेगी तो आपको दुख होगा, है आए ये तो मेरे से आगे है ना। लेकिन क्या संभव है कि ऐसा कि सबसे आगे आप हो? यही तो अधूरापन है, यही तो आपके सोच का अधूरापन है। और ये जो पूर्णता है वो परमात्मा के आश्रय के बिना, आत्म तत्व के साक्षात्कार के बिना संभव नहीं है। इसलिए वहां पर नारद जी महाराज ने कहा कि आपने जैसे दुनिया का प्रतिपादन किया है वैसे भगवान की लीलाओं का प्रतिपादन नहीं किया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सबका प्रतिपादन किया है, न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। आप भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करो, आपके सारे शोक मोह दूर हो जाए। इसलिए संसार को आप संसार की दृष्टि से देखेंगे तो आपको हमेशा अधूरा मालूम पड़ेगा, और संसार को परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो संसार हमेशा आपको पूरा मालूम पड़े। इसलिए यहां पर कहते हैं अश्वत्थ सनातन, ये है अश्वत्थ परिवर्तनशील है, लेकिन आम आदमी को संसार के रूप में ही ये शाश्वत मालूम पड़ता है। वासना की दृष्टि से जब आदमी संसार को देखता है तो उसको शाश्वत मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है कि मनो ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है, यह हमारे साथ हमेशा बना रहने वाला है। लेकिन तत्व दृष्टि से सनातन है, संसार की दृष्टि से नहीं है। और वासना का जो कारण है ये संसार के दृष्टि से है। हमारे अंदर जो वासनाएं पैदा होती हैं, कामना विकार जलन घृणा पैदा होती हैं, ये परमात्मा के दृष्टि से नहीं, ये संसार के दृष्टि से पैदा होती है। हम यदि परमात्मा के दृष्टि से देखें इस दुनिया को तो हमारे अंदर कोई वासना ही पैदा न हो, राग द्वेषादि विकार ही पैदा न हो। इसलिए कहते तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृत मुच्यते। इस संसार का जो मूल है वो ब्रह्म तत्व है, और वही शक्ति है शुक्र माने बीज, वो ब्रह्म तत्व संसार का बीज है, शक्ति है। और तदेव अमृत कारण रूप से जो विद्यमान परमात्मा है वो अमृत है, वो कभी मरता नहीं है। ब्रह्म तत्व संसार के प्रति कारण है, संसार को पैदा करता है, लेकिन वो कभी मरता नहीं है। तस्मिन् लोका श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन। और ये पैदा करने के बाद ये सारी दुनिया परमात्मा से अलग नहीं होती हैं, वो परमात्मा में ही रहती हैं, वो संपूर्ण दुनिया का आश्रय है। सोना अलंकारों के प्रतिकारण है, इसलिए अलंकार कभी सोने को छोड़ के नहीं रहते हैं। तदु नात्यति कश्चन, कभी ये दुनिया उसका अतिक्रमण नहीं कर सकती, परमात्मा का अतिक्रमण करने का सामर्थ्य किसी का भी नहीं है। आप परमात्मा को छोड़ के नहीं रह सकते हैं, जैसे अलंकार सोने को छोड़ के नहीं रह सकते। अलंकार कितना भी बोल दे कि हम सोने को छोड़ के रहेंगे, तो सोने को छोड़ के नहीं रह सकते, क्योंकि सोना ही तो अलंकार बने, सोना ही अलंकार बने। और इसी बात को वेदांत में बोला गया है अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, ये समझने जैसी बात है। वेदांत की प्रक्रिया में दो प्रकार के कारण हुआ करते हैं, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। निमित्त कारण का अर्थ है जिसके द्वारा कार्य हो और जिसके बिना भी कार्य का अस्तित्व बना रहे, उसको निमित्त कारण बोलते हैं। जैसे कुम्हार है, वो घड़ा बना देता है, कुम्हार के बिना घड़े का होना संभव नहीं है, इसलिए घड़े के निर्माण में कुम्हार निमित्त कारण है, बना देता है, बेच देता है और वो घड़े से अलग हो जाता है। घड़े के होने के प्रति कुम्हार की आवश्यकता नहीं, घड़े के निर्माण करने के प्रति कुम्हार की आवश्यकता है। जिसके बिना कार्य न हो और जिसके बिना भी वो रह जाए, उसी को निमित्त कारण बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर के प्रति निमित्त कारण हमारे माता पिता है, माता पिता के बिना शरीर का निर्माण होना संभव नहीं है, लेकिन शरीर का होना संभव है। माता पिता शरीर का निर्माण करके कई बार मर जाते हैं और उसके बाद भी हमारा शरीर बना रहता है। हमारे शरीर के प्रति निमित्त कारण ये हमारे माता पिता है, बहुत सारी चीजें हैं। घड़े के प्रति निमित्त कारण कुम्हार है, और उस घड़े के प्रति जो मिट्टी है ना, वो उपादान कारण है। मिट्टी के बिना घड़ा संभव नहीं है, लेकिन मिट्टी के बिना उसका होना भी संभव नहीं है, उसका अस्तित्व भी संभव नहीं है। मिट्टी से आप घड़ा बना ले और घड़ा बनाने के बाद मिट्टी को आप निकाल ले वापस, आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो मिट्टी अनुगत हो गई, घड़े में अनुगत हो गई, आप घड़े के कनकन में मिट्टी हो गई, मिट्टी ने घड़े का आकार ले लिया, वहां मिट्टी ही घड़ा बन गई। अब वो घड़ा और मिट्टी अलग नहीं है, वो दोनों एक हैं। आप जब घड़े को हाथ में लेंगे तो आपके हाथ में मिट्टी आएगी, आप घड़ा भी लेंगे हाथ में तो भी आपके हाथ में मिट्टी आएगी। वो दोनों की इतनी एकरूपता है, इसलिए घड़े के प्रति मिट्टी उपादान कारण। उपादान कारण माने जिसके द्वारा कार्य हो और जिसके बिना उसका अस्तित्व ना रहे। मिट्टी के बिना घड़ा नहीं होता है, मिट्टी के द्वारा घड़ा बनता है और वो मिट्टी के बिना नहीं रहता है, इसलिए मिट्टी उसका उपादान कारण है। ऐसे इस दुनिया के प्रति कारण कौन है? इस दुनिया को भगवान ने बनाया, इसका निमित्त कारण कौन है? इसका उपादान कारण कौन है? क्योंकि कारण तो परमात्मा के अलावा कुछ था ही नहीं ना। मैं जब भगवान दुनिया बना रहे थे उस समय भगवान को छोड़कर और कुछ था क्या? भगवान को छोड़कर और भी कुछ होता तो फिर वो सारी चीजें भी वो दुनिया के प्रति कारण बन जाती। सदैव सौम्येदमग्र आसित। श्रुति कहती सत एव सौम्य इदम अग्रे, इदम अग्रे मैंने दुनिया बनाने के पहले। भाई कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वहां बहुत सारी चीजें हैं, वहां जमीन है, वहां चक्र है, वहां पानी है, हवा है, उसके आसपास मदद करने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। जैसे वहां घड़े के प्रति कारण तो बहुत सारे निमित्त कारण हैं, लेकिन जब दुनिया भगवान बना रहे थे उस समय कुछ नहीं था। सत एव सौम्य, सद्रूप जो परमात्मा अकेले थे, इसलिए भगवान को छोड़कर कोई दूसरा निमित्त कारण नहीं है। भाई भगवान ने जब दुनिया बनाई तो वहां दुनिया बनाने के लिए कोई सामग्री भी रही क्या भगवान को छोड़ के? भाई वहां कुम्हार तो बहुत सारी सामग्री जुटा करके घड़ा बना लिया, ऐसे भगवान ने दुनिया बनाई तो बहुत सारी चीजें जुटा के बनाई होगी, और वो जुटाई हुई तो कहां से जुटाई होगी, और वो सारी सामग्री जुटाई हुई वो कहां से पैदा हुई? इसलिए भगवान को दुनिया बनाने के लिए सामग्री जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और भगवान को भी दुनिया बनाने के लिए सामग्री जुटाना पड़ेगा तो वो भगवान होगा क्या? क्या आप उसको भगवान बोलेंगे? और जब सामग्री जुटाएंगे तो उसमें से कोई सामग्री कम पड़ गई या उनमें से कोई सामग्री नहीं होगी तो भगवान भी दुनिया नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में भगवान की भगवत्ता ही बनेगी नहीं। आप भगवान को क्या बोलते हैं? कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम समर्थ। वो कर भी सकते हैं और वो नहीं भी कर सकते हैं, और वो उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा उसका अर्थ। कर्तुम माने कर भी सकते हैं, और अकर्तुम माने नहीं भी कर सकते हैं, और अन्यथा कर्तुम माने अरे उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा मतलब। आपके अंदर कर्तुम सब कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये बहुत मजेदार बात है मधुबाबू। आप कर सकते हैं, ये करने का सामर्थ्य होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो नहीं करने का सामर्थ्य होना ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको बोलेंगे इतनी माला जप करो, आप बैठ के जप कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलूं कि आप कुछ मत करो तो करना सरल है कि नहीं करना सरल है? करना तो बहुत सरल है, लेकिन नहीं करने में जाना बहुत कठिन है। आपको मैं बोलूं पांच मिनट आप अपना हाथ हिलाते बैठे रहो, बैठोगे? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, यूं घंटा भर बैठ जाए। लेकिन मैं बोलूं आप एक साथ एक स्थिर हाथ बनाए रखो, कुछ नहीं करना है, आपके हाथ की जो क्रिया है वो खत्म कर दो और स्थिर हाथ बना के दो मिनट बैठे रहो, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए करने की अपेक्षा नहीं करना ज्यादा कठिन है। आदमी कर भी सकता है लेकिन नहीं भी कर सकता है, ये बहुत कठिन है। आप खा सकते हैं, बहुत सरल है, खाना सरल है कि नहीं खाना सरल है? आपको डॉक्टर ने बोला कि भैया ये मीठा खाओ, वो तो वो खाते ही रहते हैं भाई, वो खाते ही रहते हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला मत खाओ, वो तो बहुत कठिन है। डॉक्टर ने बोला कि भैया तुम नमक मत खाओ, खाना तो बहुत सरल है लेकिन नमक नहीं खाना बहुत कठिन है। एक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, गीता प्रेस के बहुत महापुरुष थे, सब कुछ छोड़कर यहां आए होंगे, सब कुछ छोड़कर गीता प्रेस गीता वाटिका में बैठ गए। किसी ने जाके पूछा कि महाराज आप क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं करता हूं। बोले कि मैंने मन को समझा दिया, आज तक तुमने बहुत कुछ किया है लेकिन अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। बोले मेरे मन ने मान लिया, अब मैं कुछ नहीं करता हूं। ये है अकर्तुम सामर्थ्य। परमेश्वर में वो सामर्थ्य है, वो कर भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते। आप बहुत कुछ कर रहे हैं संसार में, कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने मन को आदेश दो अब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वासनाएं खत्म, कामनाएं विकार खत्म। आप अपने मन को समझा दे अब राग द्वेष नहीं करना है, तो नहीं करना है। ये करने का भी सामर्थ्य हमारे में हो और नहीं करने का भी सामर्थ्य हमारे में हो, चलने का भी सामर्थ्य हो और नहीं चलने का भी सामर्थ्य, सोचने का भी सामर्थ्य हो और नहीं सोचने का भी सामर्थ्य, विचार करने का सामर्थ्य हो, विचार में जाने का सामर्थ्य हो और निर्विचार होने का भी सामर्थ्य हो। हम जब चाहे तब निर्विचार हो जाए, जब चाहे तब। ये परमात्मा सारी दुनिया बना लेते हैं और भगवान को ऐसा लगे कि चलो भैया अब समाधि लगा ले, तो भगवान को लगे सारी दुनिया बना दी अब इसको बिगाड़ दू क्या। अच्छा भगवान, ये कर्तुम और अकर्तुम सामर्थ्य, उसमें कर्तुम सामर्थ्य भी है अकर्तुम सामर्थ्य भी है, वो कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है। ये सामर्थ्य है, नहीं करने का भी सामर्थ्य है। आदमी में करने का सामर्थ्य होता है लेकिन नहीं करने का सामर्थ्य नहीं होता, इसलिए वो करने में अटका पड़ा रहता है। आदमी के जीवन में करना बंधन तब बनता है जब उसमें अकरने का सामर्थ्य नहीं होता है, नहीं करने का सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए कर्म बंधन बन जाता है। कर्म बहुत बड़ा बंधन बन जाता है क्योंकि करने का सामर्थ्य तो है और वो करना हमें बंधन में ले जाता है, आदत में ले जाता है, करने में ले जाता है और फिर निष्कर्म हमारे जीवन से विदा हो जाता है। वो बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए ईश्वर में बंधन नहीं, कर्म का बंधन ईश्वर में नहीं है क्योंकि उसमें नहीं करने का सामर्थ्य है, कर्म के त्याग का सामर्थ्य है। और अन्यथा कर तुम बने, अरे वो तो उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, बिना कारण का भी कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाया, ये कर्तुम सामर्थ्य है, अकर्तुम है कि अन्यथा कर्तुम है, अन्यथा कर्तुम है। भगवान ने अग्नि का पान कर लिया, अग्नि का पान करना, सारा वन जलने लगा, चारों ओर से ग्वाल बाल घिर गए और सबने भगवान से प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो, आप गोकुल के नाथ हैं, हमारी रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा आंख बंद कर लो, सबने आंख बंद कर ली और भगवान ने कहा भगवान को याद करो, भाई बचाने वाला तो वही है ना। एक बार की बात कहते हैं, परम पूज्य महाराज श्री जगन्नाथपुरी गए थे, उसमें बहुत सारे लोग महाराज जी के साथ थे, उसमें स्वामी श्री प्रबुद्धानंद जी महाराज जी भी थे। वहां का समुद्र बहुत अच्छा है जगन्नाथपुरी, तो बहुत आपको स्नान करना हो तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपको सावधानी से करना पड़ता है। और वो बहुत अंदर चले गए, लोगों ने रोका आज मत जाओ, लेकिन वो आप सोचते थे कि मैं तो आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म को क्या होता है। महाराज जी ने कहा भैया ब्रह्म हो तो अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अरे बोले नहीं, वो तो ब्रह्म हूं मैं। लोग भी सोचे कि भाई ब्रह्म को कुछ होता जाता तो नहीं, लेकिन हुआ, वो समुद्र ले गया अंदर, ले गया वो, सचमुच ले गया भैया, सचमुच ले गया वो। अब सब लोग रोना गाने लगे, महाराज जी ने कहा रोने गाने से कुछ नहीं होता है, बोले किनारे बैठो और भगवान का भजन करो। बोले अब उस ब्रह्म को बुलाने का एक ही उपाय है, बोले ब्रह्म को याद करो। अब सब लोग बैठ करके याद करने लगे, महाराज जी की कृपा थी, फिर वापस आ गए। फिर बाद में लोगों ने कहा जाओगे, बोले नहीं बस बस बोले देख करके आ गए ब्रह्म तत्व। भगवान ने कहा कि एक ही उपाय है, आंख बंद करो और भगवान को याद करो। भगवान ने बहुत बड़ा संदेश दिया, वहां आंख बंद कराने की जरूरत नहीं थी। अरे भैया तो खुले आंखों से भी भगवान बोलते, देखो देखो मैं अभी अग्नि का पान कर देता हूं, सब अग्नि का पान कर लेते और सब लोग देखते, अरे इन्होंने अग्नि का पान कर लिया हा? लेकिन नहीं, भगवान ने सोचा कि इनके अंदर भगवान के प्रति समर्पण पैदा करना भी जरूरी है। भगवान की आंख बंद करो, याद करो, भगवान याद करने लगे और याद करने लगे भगवान सब अग्निपान कर लिए। और भगवान ने कहा आंखें खोलो, आंखें खुली, देखो सब अग्नि का अग्नि समाप्त, तो वहां कोयले कोयले रह गए थे चारों ओर, नारा धुआं भी नहीं था वहां से, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं नहीं निकलता है भाई। जहां भी धुआं निकलता है वहां थोड़ी बहुत अग्नि तो रहती है ना, लेकिन भगवान ने सारी अग्नि का पान कर लिया और वहां धुआं भी नहीं, कोयले ही कोयले। अब सब लोग देख करके बड़े प्रसन्न हुए और सोच क्या रहे थे, हमारी बात भगवान ने सुनी, भगवान के प्रति आस्था निर्मित हो गई। लेकिन उनको ये बोध नहीं था कि यही भगवान है, बोले कोई भगवान होगा जिसने अग्नि का पान कर हमारी रक्षा करती। कई बार करते हैं ना बच्चों को भी ऐसा करते हैं, मैंने देखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं। बोले खिलौना मांगता है बच्चा तो बोले भगवान से मांगो, आंख बंद करा देते हैं, आंख बंद कर देता है भगवान, वो पर्चे चपका देता, ओहो बच्चे को सचमुच लगता है कि भगवान ने दिया खिलौना। और वो कई बार बच्चे फिर हाथ जोड़ के फिर भगवान को बोलता है खिलौना खिलौना खिलौना। आस्था निर्मित करने के लिए भगवान ने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद कर दी, अग्नि का पान कर दिया। ये अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है, अग्नि का पान करना संभव ही नहीं है, ये तो असंभव चीज है। हनुमान जी महाराज ने गिरिराज को द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया, ये अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य। तो भगवान में तीनों प्रकार का सामर्थ्य, कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम। इसलिए परमेश्वर को दुनिया को बनाने के लिए कारण समुदाय को जुटाने की जरूरत नहीं है। आज भी कारण समुदाय को जुटाकर दुनिया बनाने का सामर्थ्य ईश्वर में है, तो इसका मतलब कि वो ईश्वर ही नहीं है, वो पराधीन तत्व है। ईश्वर तो स्वाधीन है, पर सर्वतंत्र स्वतंत्र है। और नहीं तो ईश्वर को भी यदि साधन सामग्री जुटाना पड़े तो ईश्वर भी बोलेगा भैया ये हम नहीं कर सकते। बोले क्यों, वो चीज नहीं है, क्यों सारी चीजें जुटाते एक भी चीज रह जाए तो भगवान भी दुनिया बना नहीं पाएंगे। इसलिए इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है वो इसका निमित्त कारण भी है और इसका उपादान कारण भी है। परमेश्वर से छोड़कर दूसरा कोई इसका निमित्त कारण नहीं है। ये सारी दुनिया परमात्मा से बनी और ये उपादान कारण भी है। मैंने आपको कहा उपादान कारण जिससे दुनिया बने और जिसके बिना दुनिया का अस्तित्व न रहे उसी को उपादान कारण बोलते हैं। मिट्टी से घड़ा बनता है और वो मिट्टी के बिना नहीं रहता है, उसका अस्तित्व घड़े के अस्तित्व के साथ जुड़ जाता है, घड़े के अस्तित्व के साथ मिट्टी का अस्तित्व बन जाता है, दोनों का अस्तित्व एक हो जाता है। जो घड़े का अस्तित्व है वही मिट्टी का अस्तित्व है और इसीलिए घड़े के प्रति मिट्टी उपादान कारण है, इस दुनिया के प्रति उपादान कारण परमेश्वर है और इसके प्रति निमित्त कारण भी परमेश्वर है। और आप इतना सिद्धांत जान ले आपको फिर वेदांत की बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। आपने केवल इतना ही जाना उपादान कारण परमेश्वर है, उपादान कारण ईश्वर है, आत्म तत्व है, आपने इतना ही जान लिया। अब वेदांत में आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब आपको दुनिया जब दिखाई देगी तो आपको क्या दिखाई देगा। इसलिए दुनिया में केवल एकमात्र सिद्धांत ये सनातन वेदांत का सिद्धांत है, ये सारी जो दुनिया है परमात्मा का रूप है। इसलिए कहते हैं तस्मिन श्रिताः, उसी के अंदर उसी के आश्रय में ये दुनिया के सारे पदार्थ रहते हैं। तदु नात्यति कश्चन, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता है, उसको कोई लांग नहीं सकता है। अतिक्रमण का अर्थ ही है उसको कोई लांग नहीं सकता है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता है। आप कैसे छोड़ोगे? आपके हाथ में घड़ा है, आप मिट्टी को कैसे छोड़ोगे? आप मिट्टी को छोड़कर घड़े को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप सोने को छोड़कर अलंकारों को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप लेके दिखाइए कि आप अलंकार तो हाथ में ले लेकिन सोना न ले। आप घड़े को हाथ में तो ले लेकिन मिट्टी को हाथ में न ले, ये कैसे संभव है? सर्वे वेदा यत पदम आमनंती तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ओम इति। कठोपनिषद। सर्वे वेदा यत पदम आमनंति, सर्वे वेदा अवेदाश्च। एक आप वहां व्याकरण का एक सूत्र एंगः पदान्तादति, आप उसमें अ लगा दो सर्वे वेदा, और एक दूसरा भी अर्थ निकालो अवेदाश्च। दुनिया के सारे वेद और अवेद, माने वैदिक शब्द और अवैदिक शब्द, वो परमात्मा का ही प्रतिपादन करते हैं। ये वैदिक शब्द परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं, ये तो आपको मालूम है। सारे वेद परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं, ये आपको मालूम है। लेकिन जो वेद भिन्न शब्द हैं, वो भी परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। ये माइक है, ये किसका नाम है? ये माइक नाम किसका है? आपका सोचते हो ना कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जब सब कुछ ब्रह्म है तो ये माइक ब्रह्म है कि नहीं? ये ब्रह्म है तो ये किसका नाम है? ये माइक के नाम किसका है? अच्छा, मैं आपको एक बात पूछता हूं, ये आपका जो शरीर है ना, शरीर, ये आपके पूरे आकृति का नाम शरीर है, तो इसका नाम क्या है? अंगुली का नाम क्या है? जब आप अंगुली बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? हाँ, बोलो बोलो, डरो मत, कुछ डर रहे हो क्या? आपका ये पूरा शरीर शरीर है, शरीर पद वाच्य, ये आकृति है, ये नाम रूपात्मक जो शरीर है, ये आकृति जो है, इस आकृति को आप शरीर बोलते हो। तो ये क्या है? हाथ है। ये हाथ किसका नाम है? अरे शरीर का ही है। ये नाखून, ये किसका नाम है? ये नाक किसका नाम है? ये कान किसका नाम है? ये आंख किसका नाम है? ये बाल किसका नाम है? अरे जितने भी अंग उपांग हैं इसके, ये सारे नाम किसके हैं? शरीर के हैं। अजा बोलते सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। जब सब ब्रह्म है तो ये माइक कौन है? तो ये माइक नाम किसका है? डरो मत। ये सारे दुनिया के शब्द जो है ना, वो परमात्मा को ही बोलते हैं। ये माइक भी जब बोलता है तो किसको बोलता है? परमात्मा को ही बोलता है, क्योंकि परमात्मा को छोड़ के दूसरा नहीं है। जैसे नाक बोला तो भी किसको बोला? शरीर को। शरीर ही है ना। आप शरीर एक व्यापक शब्द है और नाक एक परिचिन्न शब्द है, लेकिन वो है किसका? शरीर का है। आप माइक बोलो, ये परिचिन्न शब्द मालूम पड़ता है, लेकिन ये माइक शब्द किसका नाम है? ब्रह्मा का ही नाम है। अभी गिरीश नाम किसका है? ब्रह्मा का ही नाम है। मधुबाबू नाम किसका है? अरे ब्रह्म का ही, क्योंकि उसको छोड़ के दुनिया में कुछ भी तो नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। इसलिए ये सारे दुनिया के जितने भी नाम हैं, वो नाम परमात्मा के नाम। सर्वे वेदा अवेदाश्च, दुनिया के सारे वेद और वेद को छोड़कर दुनिया के शब्द यत पदम आमनंती, उसी परमात्मा के बारे में ही कहते हैं। अरे आप घड़ा बोलो तो भी मिट्टी, और सकोरा बोलो तो भी, कुल्लड़ बोलेंगे तो वो भी मिट्टी, और ये शरीर बोलेंगे तो अरे ये भी मिट्टी है ना। इसलिए कहते नातेति कश्चन, आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। आप घड़े को हाथ में लेके मिट्टी को नहीं छोड़ सकते हैं। जब आप घड़ा हाथ में लेंगे तो आपके हाथ में मिट्टी होगी। आप सोने को छोड़ के अलंकारों को ग्रहण नहीं कर सकते। आप अलंकार को छूते हैं उसमें आप किसको छूते हैं? आप सोने को ही छूते हैं। इसलिए भगवान ने गीता जी में बोला ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने के बाद आप दुनिया को छोड़कर भागते नहीं है। उस समय आपकी सारी क्रियाएं आपका व्यवहार ब्रह्मरूप हो जाता है। आप चल भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप छू भी रहे हैं, आप खा भी रहे हैं। ये सारी जो क्रियाएं सारा जो आचरण व्यवहार है आपको ऐसे अनुभव में आता है वो सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम अर्पण हवि आप यज्ञ कर जो भी कुछ सब कुछ ब्रह्म है। अब वो ज्ञानी बैठ करके हवन भी करता है तो जानता है वो अग्नि भी ब्रह्म है, होता भी ब्रह्म है, और जो हवनात्मी का जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है, और जिसका आप हवन कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। एक महात्मा जी थे, हम तो नए नए वेदांत पढ़ते थे, नए नए वेदांत जी थे, हम बच्चे थे, बहुत मजेदार साधु थे, और वो बीड़ी पीते थे बीड़ी, लेकिन उनका एक नियम था वो स्वयं नहीं सुलगाते थे। उनके पास बीड़ी है, माचिस है, लेकिन जब तक कोई आदमी नहीं मिलता उसको सुलगा के देने वाला तब तक नहीं पीते थे। कोई भी आदमी आ जाए, और इतने भोले भोले वो बहुत भोले साधु, वो जाते बोलते भैया इसको सुलगा दोगे, वो सुलगा देगा तो पीते थे। तो हम उनको पूछते थे महाराज आप तो ब्रह्म हैं, बोले इसमें क्या संदेह है? तो हम पूछते थे कि आप ब्रह्म हैं तो बीड़ी क्यों पीते हो? तो वो बोलते थे पीने वाला भी ब्रह्म है और ये बीड़ी भी ब्रह्म है और ये पूछने वाला भी ब्रह्म है। जब वो भोजन करते तो हम चिढ़ाते थे जाके, महाराज आप ब्रह्म हैं? बोले हाँ। तो हम पूछते थे कि आप खाते क्यों फिर भोजन? वो बोलते थे अरे ये खाने वाला भी ब्रह्म है, ये भोजन भी ब्रह्म है, खाने की क्रिया भी ब्रह्म है, और ये बोलिए सब विश्व ये ब्रह्म है। एक बार तो पूछा उन्होंने मेरे को, तुमको विश्वरूप हो गए दर्शन हो गया क्या? मेरे को पूछा कि तुमको विश्वरूप के दर्शन हो गए क्या? रावा हमको तो उतना ज्यादा बोध तो था नहीं, हमने कहा ये विश्वरूप का बोध तो अर्जुन को हो गया था। हमने कहा अर्जुन को हो गया था, पर मेरे हमको कहां से होगा? अरे बोले नहीं, ये विश्व ही वो परमात्मा का रूप है, तुमको भी विश्व का विश्वरूप का दर्शन संभव है। विश्वरूप का दर्शन माने ये विश्व ही परमात्मा का रूप है, ये विश्व परमात्मा से अलग नहीं है। हमने कहा फिर वो अनुभव में कैसे आए? क्योंकि भगवान ने वहां भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया था, शक्तिपात कर दिया था। उन्होंने कहा अभ्यास करो, अभ्यास अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न चक्रिय थे। उस महात्मा ने कहा अभ्यास करो। मैंने कहा महाराज अभ्यास कैसे करूं? बोले आंख बंद करके बैठो और अनुभव करो, ये विश्व भगवान का ही रूप है, अनुभव करो, ये शरीर भी ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, जो अपनी मालूम पड़ रही हैं, जो अपनी नहीं मालूम पड़ रही हैं, जो अच्छी मालूम पड़ रही हैं, जो बुरी मालूम पड़ रही हैं, जहां राग हैं, जहां द्वेष हैं, अरे बोले साहब जहां तक दृष्टि का विषय वो सब कुछ आप अनुभव करो, वो ब्रह्म है। नात्येति कश्चन, परमात्मा को छोड़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, हम परमात्मा का अतिक्रमण नहीं कर सकते। ओम नारायण नारायण नारायण। श्री बैठे थोड़ा सा हम जप करेंगे। ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम शिवाय ओम भीम नमः 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 शिवाय